الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آج انشاءاللہ سورہ مائدہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے بارے میں بھی اتفاق ہے کہ یہ ایک مدنی سورت ہے. اس میں ٹوٹل 120 آیات اور ٹوٹل 16 رکوع ہیں. اور اسے مائدہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ مائدہ عربی زبان میں ایکچولی اس کا مطلب ہوتا ہے دسترخوان. اس کو یہ مائدہ سورہ مائدہ کہنے کی وجہ ہے دسترخوان یا ٹیبل, اس کو جس کو انگلش میں دا ٹیبل کہہ سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے چل کے ان دی اینڈ ورس نمبر 112 اور اس سے لے کر 115 تک اس قال الحواریون یا عیسیٰ ابن مریم الی آخر الآیہ, وہاں تک اس دسترخوان کا ذکر آئے گا جہاں عیسیٰ علیہ السلام کے حواریون نے ان سے درخواست کی کہ ہمارے لیے ایک اوپر سے دسترخوان اللہ نازل فرما دیں, اور وہ آخر میں انشاءاللہ آئے گا. تو یہ اس کا بیسکلی شان نزول بھی سارٹ آف کہہ سکتے ہیں. اور یہ کیونکہ مدنی صورت ہے, اس میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض روایات سے, بلکہ ایک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے پتہ بھی چلتا ہے کہ نزول کے اعتبار سے سورہ مائدہ آخری صورت ہے, یعنی یہ قرآن کے اینڈ میں نازل ہوئی. اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اوور آل حلال اور حرام کے بھی واقعات جو میجر اینڈ آف دا بالکل نبوت کے دور میں تھے, اس میں زیادہ تر اور کچھ واقعات کا بھی اسی حوالے سے ذکر ہے اس صورت میں. سب سے جو موسٹ امپورٹنٹ آیت کو اگر ہم غور کریں اس میں, تو الیوم اکملت لکم دینکم و اکملت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا, کہ آج کے دن ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اس بات پہ راضی ہو گئے کہ تم اپنے دین کے لیے اسلام کو چوز کرو. تو اس آیت میں کی ایک بہت زیادہ خصوصیت ہے, کیونکہ یہ بیسکلی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد اب آن ورڈز کوئی اور چیز, یعنی دین مکمل ہو گیا کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی اور کسی سے ہیلپ لینا, کسی سیکنڈری سورس سے اس انفارمیشن کو کلیئر کرنے کے لیے وہ بھی جائز نہیں ہوا. جبکہ یہ بات نہیں ہے, کیونکہ یہ آیت تو ایکچولی نازل ہوئی تھی حجت الوداع کے موقع پر, جو کہ تقریباً رفلی 80 something ڈیز اس کے بعد نبوت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی قائم رہی, اور پھر وہ فائنلی اس کے 82 80 something ڈیز بعد جا کے فوت ہوئے. اور ان کا وصال سے پہلے جو لاسٹ آیت کے بارے میں آتا ہے, وہ ربا کی آیات جو سورہ بقرہ کے اینڈ میں آئی تھی, حرم اللہ اور ربا, جو اللہ اور رسول کی اس کے خلاف جنگ ہے جو ربا لینے والے ہیں, تو وہ ان آیات کے بارے میں آتا ہے کہ آیات کے اعتبار سے تو وہ لاسٹ تھیں, بٹ صورت کے اعتبار سے یہ لاسٹ تھی. اور یہ آیت بھی اسی لیے اس صورت میں ہونے کی خاص وجہ ہے. اور یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں ایک یہودی نے بیسکلی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے امیر المومنین, اگر یہ آیت ہمارے اوپر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو یوم عید قرار دیتے. لے اور اس بات پر کہ ہمارے لیے تو اتنی فخر کی آیت ہے, یہ یہود نے جب کسی ایک جیو نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا, تو انہوں نے اس کے جواب میں کہا کہ میں اس دن کو بھی جانتا ہوں اور اس گھڑی کو بھی جانتا ہوں جب یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی تھی, وہ عرفہ کی شام اور جمعہ کا دن تھا. گویا اس دن ہماری دو عیدیں تھیں, ایک عرفہ کی شام, وہ ایک ہماری عید کیونکہ وہ عید ہوتی ہے, اور ایک جمعہ کا دن تھا. ہر جمعہ یہ ہر مسلمان کے لیے عید کی حیثیت رکھتا ہے سارٹ آف. تو اس اعتبار سے اس آیت کی ڈیفینیٹلی ایک بہت زیادہ خصوصیت اس صورت میں ہے. اور دوسرا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر اس پارے میں کے اینڈ تک ہم دیکھیں تو ہمیں بیسکلی ٹوٹل اب 16 کی پوائنٹس ملتے ہیں. نمبر ون, اس میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے عہد اور عقد کا ذکر کیا ہے کہ جو تم آپس میں بیع وغیرہ, یا جیسے کاروبار ہوتا ہے, بزنس ہوتا ہے, یا کوئی بھی کسی قسم کا اگریمنٹ ہوتا ہے, نکاح ہوتا ہے, شادی, کوئی کسی کاروبار میں کا پارٹنرشپ, کچھ بھی جو معاملات ہیں, تو ان کے اندر اپنے عہد کو قائم رکھنے کی بات ہوتی ہے. یہ پہلا پوائنٹ اس میں ہمیں سمجھ آتا ہے کہ یہ بہت ضروری ہے دین میں, شریعت میں, جو مسلمان نے کسی سے ایک اگریمنٹ کیا ہے تو اس کو آنر کیا جائے. और फिर सेकेंडली वो चीज़ों का बयान आता है जो हराम करार दिया अल्लाह ने आगे जाके थर्ड वर्स के अंदर, हुर्रिमत अलैकुमुल मैतत वद्दमु वल्लहमुल खिंजीर, इसके अंदर ये जो चीज़ें अल्लाह ने हराम करार दी, जो डेड मीट मुर्दार जिसको कहते हैं, या कोई खून है बेसिकली ब्लड, इट्स हराम, पेगो जो इसको सूअर कह सकते हैं, खंजीर, या वो हर वो जानवर जिसे गैरुल्लाह के नाम पर ज़बह किया गया हो, अल्लाह का नाम लेकर अगर ज़बह नहीं किया गया होगा तो उस सूरत में भी वो जानवर हलाल नहीं होगा। तो हाँ, अगर ये है कि अगर कोई बहुत ही मजबूरी की हालत है, जैसे कि इसी में आगे चल के आयत नंबर 4 के अंदर तस्करा भी होता है कि यह सलूनों का माजा व इल्लाहम वाली आयत में, कि इन चीज़ों के अलावा जो बाकी जो अच्छी पाक हलाल चीज़ें हैं उनका क्या हुक्म है, तो वो बिलइत्तफाक हलाल ही होंगी और वो खाई जा सकती हैं। जो हराम चीज़ें थी अल्लाह ने खुद ही उनको मेंशन कर दिया। और फिर आगे वर्स नंबर 6 में हम देखते हैं कि वुज़ू और तयमम वगैरह की जो मसाइल आते हैं, आई लजीना आमनू इज़ा कुम तुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम, वाली आखिर ये वुज़ू का तरीका और सब कुछ। और फिर आगे उसके ये भी बताया कि जो इस्लाम है बेसिकली ये बहुत ही इजी एक दीन है, हर चीज़ में जहाँ कोई मजबूरी होती है, जो अगर कोई, तो उस सूरत में उसका ऑल्टरनेट भी हर तरीके से मुहैया होता है। जैसे आयत नंबर 6 पे आई लजीना आमनू तो सलात वली में ही जब एंड में देखते हैं, तो अगर पानी को नहीं भी किसी के पास अवेलेबिलिटी है या किसी वजह से वो बीमारी का कोई ख़तरा है, तो वो तयमम करके भी पाक हो सकता है और पाकी हासिल कर सकता है। ये इसकी कन्वीनियंस का बताया। फिर इसके बाद फाइनली फोर्थ पॉइंट जो है वो ये हो सकता है कि इसमें यहूद की जो बुजदिली और जो वो फितना और फसाद फैलाते थे, और उनकी एक सरकशी और तकब्बुर वाली जो उनकी सिफात थी, उनके बारे में इस 7वें रुकू में तस्करा होता है। और फिर उनकी औसाफ वगैरह बयान होने के बाद फिर ये नसारा की बात आती है कि जी नसारा जो क्रिश्चियंस थे उन्होंने ऐत को तोड़ा था बेसिकली, और उन्होंने अब वो बेसिकली अपने आप को अल्लाह का महबूब होने का दावा करते थे, तो अब वो उनका दावा ये आयत नंबर अगर 18 में हम जाते हैं, वकालत अलयहूद नसारा नहनु अबनाउल्लाही वअहिब्बुहू कुल फलिम युअज्जिबकुम इल्लाखिल्ला, इस आयत के अंदर हम देखते हैं कि ये लोग अपने आप को अल्लाह का महबूब होने का दावा कर रहे हैं, जबकि अल्लाह ने इनसे कहा कि, और ये कहते हालांकि कहते हैं हम अल्लाह के बेटे हैं, इसके महबूब हैं, इस दावे की तर्दीद करते हुए बेसिकली इस आयत में अल्लाह ताला ने कि अगर तुम वाकई अल्लाह के महबूब हो तो वो तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सज़ा क्यों देता। फिर इसके बाद ये कि दीन की जो दावत है, जो हक की, उस पर तुम्हें मान लिया, और इसका तस्करा होता है। और फिर उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम का वाक्य आता है कि उन्होंने इनको यहूद को, जो बनू इसराइल थे उस वक्त के, उन्हें फ़लस्तीन यानी बैतुल मुकद्दस में एंटर होने का बाकायदा आदाब सिखाए थे और तरीका सिखाया था, लेकिन उन्होंने इसकी पैरवी नहीं की और खिलाफ वर्जी करते हुए एंटर होने की बात की। क्योंकि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें कहा कि चलो चल के लड़ते हैं और अपना मुल्क वापस फतह करते हैं, तो उन्होंने ये आगे वर्स नंबर 24 में आ रहा है, कौल या मूसा इन्ना लनदखुला वदा मादा मुफिया वफाजहबन तरबुका फ़कातिला इन्ना हाउना फ़क़ाइदून, कि हम तो यहीं बैठे हैं, आप अपने रब को लेके जाएं, अपने जो रब को और उस जालिम बादशाह जिसका नाम गालबन किसी एक रिवायत में अमालका के नाम से भी आता है, तो उससे जाके वो खुद लड़े और वापस अपना मुल्क दाके हमें दे, हमारे पेश करे, और कर रहे हो तुम खुद और हम तो यहीं बैठे हैं। और उसके बाद फिर इसके तस्करे के बाद हाबील और काबील का मशहूर वाक्या, जो जिसको इंग्लिश बाइबल्स के अंदर एबल एंड केन के नाम से आता है, उनके नाम जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे थे, और हाबील ने काबील को कत्ल कर दिया था। तो ये आयत नंबर 33 में हम चलते हैं। तो इसके आगे इस किस्से के बाद ये बात असल जो गौर किया जा रहा है वो अदल अदल फिल अर्ज़ है, क्योंकि एक चीज़ होती है फसाद जिसको ऑपरेशन कहते हैं या जुल्म, इस्लाम उसके खिलाफ़ आवाज़ उठाता है। और यहाँ तक कि किसी एक ने दूसरे को अगर कत्ल कर दिया फॉर इंस्टेंस, तो वो एक फरीक दो होते हैं उसमें, दो इंसान, लेकिन फसाद फिल अर्ज़ बहुत बड़ा गुनाह है। तो इस तरह के हर तरह के, चाहे वो कोई भी गुनाह हो, कोई किसी का डाकू हो, कोई बागी हो, कोई फसादी हो, तो बाकायदा वर्स नंबर 33 में हम देखते हैं कि उनकी हाथ पांव काट देने के जो अहकामात हैं सारे वो बयान हो रहे हैं कि अगर इन्नमा जज़ाउल्लज़ीना युहारिबूनल्लाह व रसूलहू यसउना फिल अर्ज़ी फसादा अन युक़त्तलू अव युसल्लबू अव तुक़त्तऊ अयदीहुम व अर्जुलहुम मिन खल्फिन अव युनफ़ऊ मिन अल अर्ज़। ये जो अल्लाह की ज़मीन में फसाद फैलाते हैं इनके लिए इनकी सज़ा बाकायदा बताई कि इनको सूली पे चढ़ा दो या इनको काट दो इनके हाथ पांव वगैरह वगैरह, और इस तरह की इनकी सज़ाएँ बताई ताकि ज़मीन में एक सज़ा और जज़ा का निज़ाम कायम हो। क्योंकि जब तक सज़ा और जज़ा का कोई निज़ाम कायम नहीं होगा, जब तक अदल नहीं होगा, ये बड़े से बड़े लेवल पे किसी बड़ी से बड़ी कोई गवर्नमेंट लेवल पे हो, वर्ल्ड लेवल पे हो, या कोई छोटे सूबे के लेवल पे हो, सिटी लेवल पे हो, इवन फैमिलीज़ के और घरों के लेवल पे एक अदल और इंसाफ और इक्वालिटी और बराबरी हर शोबे में रखना ज़रूरी होती है। और इसी की तरगीब देते हुए इसके बाद आगे जो बड़े फसादी हैं, जो बेसिकली यानी ये छोटे लेवल पे नहीं लेकिन जो मेन सबसे ज़्यादा नुकसानदेह किस्म के लोग होते हैं, उनकी उनके बारे में इन फसादियों का जिक्र करते हुए अल्लाह सुबहाना तआला ने ये आयत नंबर 41 के अंदर, या अय्युर रसूल ला यहज़ुनका अल्लज़ीना युसारिऊना फ़िल कुफ़्रि मिनल लज़ीना क़ालू आमन्ना बिअफ़वाहिहिम वलम तुमिन क़ुलूबुहुम, ये जो डाका जनी और चोरी और फसाद के अहकाम बयान करने के बाद इन जो फसादी हैं इनका इंडिविजुअल जिक्र आ रहा है यहाँ पे, और वो किस तरह से, एक तरफ मुनाफिकीन का जिक्र आता है, फिर यहूद का कि उन्होंने झूठ बोला, वो जासूसी करते थे, और जो बेसिकली दूसरी जो मुसलमानों की जमातें थी उनको गुमराह करने की कोशिश करते थे, उनके दिलों में वसवसे डालते थे, और फिर नसारा की गवाही का कि इनको बाकायदा हमने तौरात और इंजील यानी तौरा और जो बाइबल है आज तक मौजूद है इनके हाथों में, लेकिन वो उसके अंदर जो पैगाम है, जैसे कल सूरह निसा के शुरू में वहाँ गुजरा भी था आले इमरान में, जो उनकी तौहीद के मैसेज हर किताब के अंदर आज भी मौजूद है, लेकिन वो उस पर फिर भी बहरहाल ईमान नहीं लाते। और फिर इस तौरा और बाइबल को ज़िक्र करने के बाद फिर दोबारा अल्लाह ने कुरान का ज़िक्र किया, और इसके अंदर फिर असल जो आगे चल के हम देखते हैं कि वर्स नंबर जो आयत नंबर इसका 51 के अंदर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा औलिया बाज़ुहुम औलिया उबाज़। ये आयत बहुत ज़्यादा एक्चुअली खसूसियत इसके अंदर इम्पोर्टेंस है और इसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, जो इंशाल्लाह डिटेल में तो ज़रूर सूरह काफ और सूरह बनी इसराइल के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस होगी, बिकॉज़ यहाँ पे तो ऑलरेडी आर मेन टॉपिक है सूरह मायदा। मगर ब्रीफली अगर हम समझें तो यहाँ पे ला तत्तखज़ुल यहूदा वन नसारा औलिया, कि तुम ज्यूस को और क्रिश्चियंस को अपना दोस्त मत बनाओ। इसके आगे ही इसकी एक हिंट भी है कि बाज़ुम औलिया उबाज़, यानी इसका मतलब ये नहीं है कि जितने भी दुनिया के अंदर ज्यूज़ होंगे या क्रिश्चियंस होंगे किसी को भी दोस्त बनाया नहीं जा सकता। इसका मतलब यह है कि बाज़ुम औलिया उबाज़, यहाँ पे एक हमें हिंट दी गई, एक इशारा दिया गया कि दोस्त ज्यूज़ एंड दोस्त क्रिश्चियंस वो आर आपस में एक दूसरे के दोस्त, क्योंकि हिस्टोरिकली पिछले 2000 से ऊपर साल से, जब से क्रिश्चियनिटी वॉज बॉर्न, क्रिश्चियनिटी इज़ द डायर एनिमी ऑफ ज्यूडिज्म एंड ज्यूडिज्म इज़ द डायर एनिमी ऑफ क्रिश्चियनिटी, ये दोनों आपस में कभी एक दूसरे के दोस्त नहीं रहे। तो उन लोग उनको अपना दोस्त मत बनाओ जो आपस में एक दूसरे के किसी खास मफाद की खातिर दोस्त बन गए हों, या कोई बेनिफिट चाहते हों, या जिस तरह के भी, तो ख़ास तौर से उनसे दोस्ती ना रखने की यहाँ पे हिदायत आई आयत नंबर 51 में। ये इंशाल्लाह आगे सूरह काफ में और सूरह इसराइल में ख़ास तौर से डेफिनेटली डिस्कस होगी कि वो कौन हैं और उनकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के ऊपर। यहाँ इसको आगे चलते हुए 10वां पॉइंट ख़त्म करके हम 11th पॉइंट पे जंप करते हैं। इसमें बेसिकली जो मुस्लिम हमारे रूलर्स हैं उनके लिए भी एक लम्हा फ़िक्र यह है कि यानी ये देख रहे होते हैं हर वक्त अपनी भी मुसलमानों की हालत, लेकिन आंखें नहीं खोलते और कुछ करते नहीं हैं अपनी कौम के लिए, अपनी उम्मतों के लिए, और सब अपने अपने अय्याशियों में अपने अपने पर्सनल बेनिफिट्स की खातिर अपने मकासद में लगे हुए हैं। उसके बाद 12th पॉइंट जो इनकी दोस्ती का समझें कि उसकी रखने से ख़तरा है, उसके बारे में एक सॉर्ट ऑफ हिंट मिलती है आयत नंबर ये 54 के अंदर, वो यहाँ तक बात होती है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन मन यर्तद्दा मिनकुम अन दीनी फसव यातिल्लाह बिकौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु इला आखिर लाया, कि अल्लाह का दीन तुम्हारा मोहताज नहीं है, तुम उसके मोहताज हो। अल्लाह को ये ज़रूरत नहीं है कि तुम अल्लाह को राज़ी करो, लेकिन तुम्हें ये ज़रूरत है कि अल्लाह तुमसे राज़ी हो। तो बेसिकली इसके अंदर उनकी दोस्ती से क्या होता है कि कफार से दोस्ती करने के बाद बंदा अल्टीमेटली गॉड फॉरबिड, अल्लाह ना करे दीन से दूर होता जाता है, या डिस्टेंस एक सॉर्ट ऑफ उसके अंदर आता जाता है। तो वो डिस्टेंस उसको कहीं ना कहीं, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अपने दीन से बिल्कुल बाहर ना कर दे। इस डर और खौफ से ये बार इसका एम्फेसिस यहाँ पे नज़र आता है। और उनसे फिर 13th एक और पॉइंट हम अगर गौर करें तो ये नज़र आता है कि उनसे दोस्ती के अंदर एक और जो कबाहत है, जो एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि ये जो हमारे अपने शायर होते हैं, हमारे साइंस होते हैं, हमारी सेक्रेट चीज़ें होती हैं, कुरान पाक है या नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात है, उनका मजाक उड़ाने में लगे रहते हैं, या उनको एक नेगेटिव सेंस में पोर्ट्रे करने में लगे होते हैं, उनका मीडिया, उनका पूरा जो कैंपेन होती है, जो प्रोपेगेंडा होता है, तो वो मुनासिब नहीं होता। और ये भी एक उनसे दोस्ती रखने में का बात है। और वो कुरान को भी फिर झुठलाते हैं, जबकि साफ साफ निशानियां उनके सामने आ गई, इस्लाम आ गया, कुरान आ गया, लेकिन उसके बावजूद वो उसको झुठलाते हैं। और फिर ईसाइयों को हम देखते हैं कि वो ईसा अलैहिस्सलाम को नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, अल्लाह का बेटा कहते हैं, जैसे कि उनकी बाइबल में बार बार, उनके प्रीस्ट, उनकी चर्चेस के अंदर, जीसस इज़ द ओनली बिगॉटन सन ऑफ गॉड। अब ये बात उस दिन सूरह आले इमरान में भी गुजरी थी कि लव्स बिगॉटन इट सेल्फ इज़ नॉट अ वेरी गुड वर्ड टू यूज़ फॉर अ गॉड, लेट अलोन बींग अ प्रॉफिट। तो वो बहरहाल इस ये अगर हम गौर करें आयत नंबर, मल मसीह इब्न मरियम इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्ल रसूल, ये इस आयत के अंदर इसका इनका तस्करा होता है। और उसके बाद फिर इनको ख़ास हिदायत के तौर पे ये आयत नंबर 77 में हम देखते हैं कि कुल या अहले किताबी ला तगलू फी दीनिकुम गैर अल हक़, कि तुम भाई दीन में गुलू ना करो, यानी जो हक बात है उसको हक मानो, जो हक नहीं है उसको जुटलाओ, लेकिन दीन में अपने गुलू ना करो, क्योंकि अक्सर गुमराही का सबब बन जाता है। तो इसलिए गुलू मीन्स के एग्जैजरेशन, ये बिदात, जैसे दूसरी एक हदीस में भी आता है, वो जहाँ पे कि जहाँ पे कन्फ्यूजन हो एक मुसलमान को कि क्या करना चाहिए, मई यश मिनकुम बादी फसजद इख्तलाफन कसीरा फ़अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतुल खुलफा राशिदीन अल महदीयीन तमस्सकू बिहा वअज़ु अलैहा बिन्नवाजिज़ व इय्याकुम व कुल्लु मुहदसतिल उमूर वल कुल्लु मुहदसतिल उमूर बिदा वल बिदअतुन ज़लाला व ज़लालतु फिन्नार, के हर चीज़ जो दीन में गुलू यानी एग्जैजरेशन, या जो दीन में साबित शुदा चीज़ नहीं है उसको दीन में साबित करने की कोशिश करने से, फिर आग ही उसका वो बिदत बन जाती है, और बिदत फिर आग यानी नार जहन्नम का सबब बनती है। और फिर इसके बाद इन्होंने आगे अल्लाह पाक ने यहूद पर अल्लाह की लानत का सबब बयान किया कि ये अल्लाह की नाफरमानी करते थे, और हद से तजावज़ जो अल्लाह ने उनको ऑर्डर्स दिए हुए उनमें एग्जैजरेशन, फिर आगे तजावज़ करते थे, हेरा फेरी करते थे, और बुरे कामों से मना नहीं करते थे। ये की पॉइंट यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें हमें उम्मत मुहम्मदिया को भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नसीहत हो रही है कि अमर बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर, जैसे कल की आयत, कल उस दिन गुजरा था, उखरिजत लिन नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, जिसके बारे में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा था कि फरमाया था कि ये अल्लाह की शर्त में से है कि तुम अल्लाह अगर मुसलमान बनना चाहते हो तो अल्लाह की शरायत में से ये शर्त है कि नहीं अनिल मुनकर भी करो और अमर बिल मारूफ भी करो। ये हमेशा कुरान में साथ साथ है। तो यहाँ इसका ख़ास तौर से एक एम्फोसिस इस बात से दिया गया कि बनी इसराइल के भी जो उलमा थे वो उनको इस अपनी कौम को बुरे कामों से मना करते थे, लेकिन बस एक दफ़ा बोला फिर खामोश हो गया, फिर वो उन्हीं में बैठते थे जाके, और ज़्यादा उस पर नागवारी का कोई इजहार नहीं करते थे। तो ऐसे उनसे मिलते जुलते थे जैसे कोई कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है अगर वो अल्लाह की नाफरमानी कर भी रहे हैं तो कोई इशू नहीं है। तो इस बात के ऊपर ये ख़ास तौर से उनके उलमा का हाल जो है, इसकी एक और अगर हम देखें, तिर्मिज़ी शरीफ में एक रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब बनी इसराइल मासी में मुब्तला हुए तो उनके उलमा ने उन्हें मना नहीं किया, मगर उन्होंने मना किया मगर वो बाज ना आए, तो उनके उलमा ने उनकी मजलिसों में बैठते रहे और उनके साथ खाते पीते रहे। चुनाचे अल्लाह ने इन सब के दिलों को एक जैसा कर दिया, यानी उन्हें भी अपने उलमा की उलमा को भी अपनी आवाम की तरह जाहिली बना दिया और उनकी आंखों पे भी पट्टी पड़ गई। और बाकायदा आयत नंबर 78 में देखें, लॉ इनजीन कफर उमिन बनी इसराइल अला लिसान दाऊदा व ईसब न मरियमा, कि बाकायदा दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़बानी उनको लानत की गई और बाकायदा ईसा अलैहिस्सलाम की ज़बान से उनके ऊपर अल्लाह ने लानत पर उनको दी गई, लेकिन फिर भी ये लोग बाज नहीं आए। और ये हदीस जब नबी अलैहिस्सलाम बयान कर रहे थे तो पहले वो टेक लगाए हुए थे, फिर वो सीधे होकर बैठ गए और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, ना तुम्हारा ईमान कामिल हो सकता और ना ही तुम अल्लाह के अज़ाब से निजात पा सकते हो जब तक कि तुम लोगों को हक बात की दावत ना दो और हक बात कबूल करने पर आमादा ना करो और उन्हें जुल्म और मासी से ना रोको। ये तिर्मिज़ी शरीफ में रिवायत है। तो यानी इस पर दोबारा एक दफ़ा अमर बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर करने का एक मुसलमान की ज़िंदगी में अहमियत बयान होती है। और ये इनके दोबारा फिर यही के जो आखिरी लास्ट आयत है कि मुसलमानों के सबसे ज़्यादा जो दुश्मन है वो यहूद और मुशरिकीन है, और कुरान के इस दावे पर यहूद की पूरी तारीख गवाह है। और इस बात को हम देखते हैं कि लतजिदन्ना अशद्द अलन्नासी अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूद वल्लज़ीना अशरकू वलतजिदन्ना अक़रबहुम मवद्दतन लिल्लज़ीना आमनुल लज़ीना क़ालू इन्ना नसारा आखिर आयत आयत नंबर 83 है। इसका अगेन बहुत ज़्यादा एम्फसिस और इम्पोर्टेंस होना चाहिए और इंशाल्लाह ये डिटेल में सूरह बनी इसराइल और सूरह काफ के अंदर जाके आगे डिस्कस डेफिनेटली होगा, क्योंकि इसका भी रिलेशन उसी जो पहले वर्स नंबर 51 में जहाँ पे यहूद और नसारा का जिक्र आया था, उसी तरह से ये भी सूरह काफ और बनी इसराइल से जाके ज़्यादा रिलेटेड सब्जेक्ट समझ आता है। तो इंशाल्लाह वहाँ पे ये ज़रूर डिस्कस होगा, बट ब्रॉडली यही देखेंगे, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ पे भी एक लफ्ज़ है लतजिदन अशद्द अलन्नासी अदावतन लिल्लज़ीना आमनू अल यहूद, के ईमान वालों के सबसे ज़्यादा मुसलमानों के जो बिगेस्ट दुश्मन होते हैं वो यहूद होते हैं। यहाँ पे वर्ड एक कहीं कहीं पे कुरान में हम देख रहे हैं या बनी इसराइल या बनी इसराइल, और कहीं पे हम देख रहे हैं यहाँ पे यहूद का लफ्ज़ आ रहा है। आमतौर पे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि ये एक ही है, बट ऐसे ही कुरान में कोई वर्ड अलग अलग किसी विदाउट एनी रीज़न या लॉजिक के ज़ाहिर नहीं आता। तो उसके ऊपर इंशाल्लाह सूरह बनी इसराइल में डिटेल में बात होगी कि ऐसा क्यों है कि कहीं पे यहूद लफ्ज़ आता है, यहाँ पे बहरहाल यहूद है। और आगे चल के सबसे ज़्यादा जो तुम्हारे मवद्दत लिल्लज़ीना आमनू, सबसे ज़्यादा जो तुमसे उल्फत रखते हैं और तुम्हारे करीब हैं वो नसारा हैं, क्रिश्चियंस हैं। और इसकी कुछ इसके अंदर बाकायदा वजह बताई कि अल्लज़ीना क़ालू इन्ना नसारा, कि ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि हम नसारा हैं। यानी एक होता है कि स्टैम्प्ड कि ये बंदा क्रिश्चियन है, ओके ठीक है, उसको ख़ुद पता भी नहीं होता वो एथियस्ट है, वो क्रिश्चियन है, वो क्या है उसको ख़ुद भी नहीं पता होता, बस वो नाम का होता है सेंसस ब्यूरो के अंदर जैसे डिफरेंट वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर कि इज़ अ क्रिश्चियन। बट ये जो लोग तुम्हारे दिल से करीब होंगे ये क़ालू इन्ना नसारा, ये अपने आप को कहते होंगे फ़ख्र से कि हम नसारा हैं। और ये इस वजह से होगा भी अन्ना हम मिन हम किस्से सीन व रहबान अनवाना हम ला यस्तकबिरून, कि ये वो लोग होंगे जिनके अंदर आज भी मोनास्ट्री सिस्टम जो होता है, मॉन्क्स होते हैं, ये आज भी सिस्टम उनके अंदर राइज होगा, उनके हम प्रीस्ट होंगे और सूफीज जिसको हम उर्दू लैंग्वेज में कहते हैं अन्ना हम ला यस्तकबिरून, और ये लोग अपने ऊपर प्राउड नहीं होंगे, यह ला यस्तकबिरून ये आज लोग हमारे सबसे करीब होंगे। तो ये लोग डेफिनेटली कौन है इसके बारे में वहीं पे आगे जाके बात होगी कि इसका बेसिकली ताल्लुक बनता है एक कैथोलिक क्रिश्चियनिटी है या प्रोटेस्टेंट है या ऑर्थोडॉक्स है, इन क्रिश्चियनिटीज़ के अंदर भी बहुत सारे डिफरेंसेस आपस में हैं। तो इसका बेसिक ताल्लुक उससे है कि जो प्रोटेस्टेंट्स हैं वो अपने आप को फ़ख्र से कहते हैं, तो ये ऐसा नहीं है, अगर हम गौर करें तो ये भी नहीं, वो ये भी नाम के क्रिश्चियन बाकी रह गए हैं, या कैथोलिक्स हैं वो भी ऐसे नाम की रहे, लेकिन हाँ डेफिनेटली जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी है जो आज भी दुनिया में ईस्टर्न यूरोप वगैरह में और नॉर्दर्न एशिया के इलाकों में रशिया से नीचे होती है, जिसके अंदर बहुत सारे कंट्रीज़ आज भी बुल्गेरिया है, यूगोस्लाविया है, जॉर्जिया है, और ये ऐसे बहुत से कंट्रीज़ आज भी एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पे ये वाले क्रिश्चियंस आज भी दुनिया में मौजूद हैं। इंशाल्लाह इस पे बनी सूरह बनी इसराइल में चल के बात होगी। और यहाँ पे हम आगे अगर जो सही क्रिश्चियनिटी, फिर आगे ये पारा तो ख़त्म हो जाता है छठा, और सेवन पारे के अंदर फिर जो सही ट्रू क्रिश्चियंस होते हैं उनका जिक्र आता है, ख़ास तौर से जो हबशा वाले थे, जिन जो नजाशी वगैरह, और जिनके पास जब वफ़ गया और जब वो कुरान की आयतें उनके सामने पढ़ी जाती थी, तो ऐसे दिल से उन्हें गौर से सुनते थे और बाकायदा रोना शुरू कर देते थे। तो असल यहाँ पे पॉइंट की आयत नंबर 83 और यहाँ से आनवर्ड दो तीन आयतों के अंदर यही बताया जा रहा है कि जो जो भी इस कुरान को सुनेगा और बग़ैर उसके दिल में ना कोई बोग्ज़ होगा ना कीना होगा, विदाउट एनी बायस, बिल्कुल एक अनप्रेजडिस तरीके से कुरान को सुनेगा, उसके दिल पे इंशाल्लाह ताला यकीनन ज़रूर ब ज़रूर इसका कोई ना कोई असर ज़रूर होगा। और इसके बाद अगर हम गौर करें तो मक्की सूरतों में मोस्टली, क्योंकि अकायद वगैरह से बहस हो रही होती थी, और मदनी सूरतों में हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो शरी तशरी उमूर हैं, यानी कि जो करने और ना करने के मामलात होते हैं, वो ज़्यादा डिस्कस हो रहे हैं। बिकॉज़ ये बात की ज़िंदगी में शुरू में अकायद लोगों के पुख्ता करने की ज़्यादा अहमियत थी, इससे ज़्यादातर मक्की सूरतों में अकायद पे बहस होती है, आगे चल के हम देखेंगे इंशाल्लाह। और यहाँ मदनी सूरतों में हम देख रहे हैं ज़्यादातर जो एवरीडे लाइफ से मामला आते हैं। अब इसी तरह सातवें पारे के शुरू में जो सूरत, ये जहाँ तक ख़त्म होती है सूरह मायदा, इसके अंदर हम गौर करें तो आठ की हमें फिर पॉइंट्स और मिलते हैं, जो जिनमें से सबसे पहले कि हलाल और हराम होने का, किसी भी चीज़ को कोई कहता है हलाल है कोई कहता है हराम है, तो यहाँ पे एम्फसिस बाकायदा 87 आयत के अंदर जाके दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहर्रिमू तय्यिबाति मा अहल्लल्लाहु लकुम, कि जिस चीज़ को अल्लाह ने हलाल किया है उसको तुम हराम करने वाले कौन होते हो। यानी ये हलाल और हराम का करना ये सिर्फ अल्लाह के हाथ में होगा, किसी इंसान को यह हक हासिल नहीं, क्योंकि काफिर ये करते थे अपनी मर्ज़ी से किसी चीज़ों को बना लेते थे, ये हलाल है ये हराम है, ख़ुद ही अपनी मर्ज़ी से आज भी यही करते हैं कि ये चीज़ खाने की है नहीं खाने की है, ख़ुद ही आज इसके ऊपर साइंटिफिक रिसर्च है तो कल उसी के अगेंस्ट साइंटिफिक रिसर्च है, आज ये खाने से अच्छा होता है हेल्थ और कल फिर उसी प्रोडक्ट के बारे में आएगा कि अब ये खाने से हेल्थ अच्छी नहीं होती। तो वो ही सॉर्ट ऑफ हलाल और हराम का कॉन्सेप्ट है। तो ये इनके बारे में ख़ास तौर से 87 और 88 में, कि ये सिर्फ अल्लाह के हाथ में होगा, ये हमारे हाथ में नहीं है कि ये चीज़ हलाल है हराम। जिसको अल्लाह ने हलाल कर दिया वो खा सकते हैं, जिसको अल्लाह ने हराम कर दिया वो नहीं खा सकते। उसके बाद आगे फिर दूसरा मैटर सेकंड पॉइंट के अंदर हम देखते हैं आयत नंबर 89 में, ला युआखिज़ुकुम अल्लाह बिललग़्वी फ़ी अयमानिकुम, ये लग्व जो कसम खाने का मामला है, जैसे किसी ने कोई कसम खा ली, कोई भी बंदा हाइपोथेटिकली स्पीकिंग कसम खाता है कि किसी काम के होने या ना होने के बारे में ख्याल के मुताबिक सच्ची कसम खाए, हालांकि वो इस गुमा जो उसका गुमान है वो उसके ख़िलाफ़ था, लेकिन वो एक अपने सोच के हिसाब से, जो वाक़ईतन ऐसा वो मामला नहीं था, लेकिन उसने अपनी सोच के मुताबिक जो फ़ैसला किया और कसम खाई वो गलत थी, तो उस पर तो कोई मुआवजा नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर ऐसी कसम किसी ने खा ली जो यानी कि मुस्तकबिल फ्यूचर में, कि मैं आइंदा कभी किसी काम के करने के बारे में कसम खाता है कि ये मैं करूँगा, और उसका वो फिर उसे पूरा नहीं करता, तो उस सूरत में उसको कफ़ारा देना पड़ेगा, जो 10 लोगों को खाना खिलाना पड़ेगा, कसा कफ़ारा यमीन जिसको बोलते हैं। और फिर तीसरा, ये आगे हम थर्ड पॉइंट देखें कि वही दोबारा जो चीज़ें आयत नंबर 90 में जाके, ये थर्ड इंस्टेंस ऑफ पहले जैसे शराब में तजरीजन, अगर हम गौर करते हैं पहला हुक्म जो आया था सूरह बकरा के अंदर वो ये था कि बस इसमें कुछ फ़ायदे भी हैं कुछ नुकसान भी हैं, फिर तो सेकेंड हुक्म सूरह आल इमरान में आया था कि इसके करीब मत जाओ जब तुम नमाज़ पढ़ रहे हो, वो उसमें फिर एक अलग वाक़या आता है गालबन कुछ रिवायात में, और यहाँ पे फिर फाइनली कैटेगोरिकली बिल्कुल जो आयत नंबर 90 के अंदर के, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल ख़म्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमल शैतान फ़ज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून। अब इसके अंदर एक नुक्ते की बात, ये अक्सर लोग ये कहते हैं कि अच्छा नहीं, लेकिन यहाँ पे लफ्ज़ हराम का नहीं आया, यहाँ पे फ़ज्तनिबू रिज्सुम मिन अमल शैतान तो कहा लेकिन वो नहीं आया। लेकिन अब बात यह है कि रिज्सुम मिन अमल शैतान का मतलब यह है कि वो चीज़ नापाक है, तो अगर कोई नापाक चीज़ होगी, कोई दुनिया में हम देखते हैं फॉर इंस्टेंस हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो हराम हो लेकिन नापाक ना हो, सकता है कोई इंटरेस्ट बेस्ड इनकम है, किसी ने सूद से पैसा कमाया, वो हराम है, उसको इस्तेमाल जायज़ नहीं है, लेकिन अगर वो जेब में है तो वो उस चीज़ से नापाकी नहीं होती, वो बंदा नमाज़ पढ़ सकता है। लेकिन कोई भी दुनिया में ऐसी चीज़ जो नापाक हो यानी कि नजिस हो, अगर वो जेब में है किसी के, कोई डर्टी कुछ फिल्थ कुछ लगा हुआ है अगर कपड़ों पे, तो उसकी नमाज ही नहीं होती, वो पाकी उसकी कंप्लीट ही नहीं होती। तो यहाँ पे रिस्म मिन अमल शैतान क्या कि ये भी कह दिया कि ये हराम तो है ही है लेकिन साथ में नापाक भी है। तो किसी चीज़ को नापाक नजस कह देना ये उसकी हराम होने की ऑटोमेटिक दलील होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि कोई चीज़ हराम हो नजस भी हो। तो यहाँ पर तो बद तो दर्ज औला इसका हुक्म साबित होता है। और फिर आगे एहराम की फोर्थ पॉइंट हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि एहराम की हालत में शिकार करने का क्या हुक्म है। दुनिया लैंड के ऊपर यानी जो जंगल वगैरह में शिकार होता है उसमें तो किसी सूरत भी शिकार हलाल नहीं है, करना जायज़ नहीं है एहराम की हालत में। और यह आयत नंबर 92 से लेकर 94 तक बताया जा रहा है। और लेकिन हाँ, जो सी एनिमल फिश वगैरह कोई बंदा अगर करता है समंदर में तो उसकी इजाज़त है। और फिर उसके बाद दोबारा बैतुल हराम जो और शहर हराम है यानी कि मक्कतुल मुकरमा, उनकी हुरमत और उसके अंदर आने वाले के लिए अमन की बात चल रही है। और इसके अंदर हम देखते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अनु का एक कॉल है जिससे इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ज़ाहिर होती है। वो ये कि अगर मैं अपने वालिद ख़त्ताब के कातिल को भी हरम में देख लूँ तो उस वक्त तक इस पर हाथ नहीं डालूंगा जब तक कि वो हरम की हदूद से बाहर ना निकल जाए। तो यानी उमर रज़ी अल्लाह अनु उसको इतना सीरियसली लेते थे कि इसकी हदूद का पामाल बिल्कुल ना हो, एब्सोल्युटली वो किसी सूरत भी जायज़ नहीं है। तो उसकी एक अहमियत बताई गई। फिर उसके बाद जो मुशरिकीन ने ख़ुद ही अपने जैसे पहले आया था कि हलाल और हराम तो अल्लाह के ज़िम्मे है करना, कोई इसका वो नहीं है, लेकिन वो लोग ख़ुद कोई पुराने ज़मानों में ये कुछ एनिमल्स का जिक्र भी एक रिवायत में मिलता है, पता नहीं इसका साहिबा बहीरा वसीला या हाम वगैरह, या आयत नंबर 103 में इनके बारे में आ रहा है कि उनको तुम अपनी मर्ज़ी से हराम कर रहे हो, मैं अल्लाह ने इन्हें हराम नहीं किया था। फिर उसके बाद आयत नंबर 106 के अंदर चल के वसीयत और गवाह की बात आ रही है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू शहादात बैनकुम इज़ा हज़र अहदकुमुल मौत हीनल वसीयत इस्नान ज़वा अदलिन मिनकुम इला आखिर अल आयत। या आयत नंबर 106 से लेकर आयत नंबर 108 तक, फ्रॉम 106 टू 108 इसका वसीयत और गवाह वगैरह का तस्करा आ रहा है कि जब किसी को कोई अगर डर हो कि मैं मरने वाला हूँ या कुछ भी। वैसे तो एक रिवायत में आता है इंसान को रोज़ अपनी वसीयत बना के रखनी चाहिए, और बाज़ लोगों का ये आई मेट देम के जिनका तरीका भी ये होता है वो रोज़ रात को सोने से पहले अपनी वसीयत लिख के सोते हैं। तो इन आयतों में ख़ास तौर से इस बात का जिक्र है, इसकी इंपॉर्टेंस का जिक्र है। और फाइनली 8 पॉइंट इस सूरत के एंड में अगर हम गौर करें तो वो एक क़यामत के दिन का जिक्र आता है कि आयत नंबर 106 में या अय्युहल्लज़ीना आमनू शहादत, नहीं सॉरी, ये इसके बाद अगली नेक्स्ट आयत नंबर 114 में बेसिकली। तो के क़यामत के दिन का मंज़र किस तरह से आता है कि अल्लाह ताला सब तमाम के तमाम जो रसूल होंगे उन्हें जमा करेंगे और उनसे सवाल करेंगे कि जब तुमने मेरा पैगाम मेरे बंदों तक पहुंचाया तो उन्होंने तुम्हें क्या जवाब दिया। इसके बाद तमाम के तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम जो होंगे वो यही कहेंगे कि हमने आपका पैगाम पहुंचा दिया अल्लाह उन लोगों तक। और फिर इसके बाद खसूसन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर एहसानात के ऊपर बात चलती है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अपने एहसानात याद दिलाएंगे। और वो कैसे, ये आयत नंबर 114 में भी इसका स्टार्ट अगर हम गौर करें, काला या कौला ईसा इब्न मरियम अल्लाहुम्मा रब्बाना अंजिल अलैना माईदतन, ये एग्जैक्टली वही तذکرہ बीच में आया जो जिसकी वजह से इसका नाम सूरह माईदा पड़ा था। और द टेबल यानी दस्तरखान, ये आयत नंबर 114 में एग्जैक्ट इसका किस्सा आता है कि जो ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों की दरख्वास्त पर अल्लाह से दुआ मांगी थी, अनजिल अलैना समा माईदतन माईदतन मिनस समा सॉरी, तो उसका जिक्र आता है। और इसी वजह से इस सूरत का नाम माईदा भी पड़ा था। और इसके बाद फाइनली इस कौल अल्लाह या ईसा इब्न मरियम अन तक़ुल तलिन्नास या अत्तखिज़ूनी उम्मी या इलाहीन मिन दूनिल्लाह, आयत नंबर 116 और एक से लेकर 118 तक, अल्लाह उनसे पूछेंगे ईसा अलैहिस्सलाम से कि आपने इन लोगों को कहा था कि तुम मुझे और मेरी वालदा को अल्लाह के सिवा माबूद ठहराओ। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसके जवाब में कहेंगे, अल्लाह तू पाक है, मेरे लिए ये मुनासिब ही नहीं था, मैं ऐसी बात कैसे कह सकता हूँ, मुझे तो ये बात करने का हक ही नहीं था। तो और फिर वो ये कहेंगे कि मैंने तो इन्हें सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत के लिए कहा था, ये खुद ब खुद ये बाकायदा ईसा अलैहि सलाम की जो जवाब होगा ये आयत नंबर 116 से ऑनवर्ड्स, कि ये ख़ुद अपनी मर्ज़ी से इस तरफ निकल गए, मैंने तो इन्हें इस तरह की किसी चीज़ का भी नहीं कहा था कि यू नो जो ट्रिनिटी का और सारा सेल्वेशन का और फादर सन और होली गोस और इन मामलात में पढ़ने का, ये तो इनका अपना घड़ा हुआ मज़हब है, इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम कैटेगोरिकली उनको बोलेंगे। तो यहाँ के अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सूरह माईदा ख़त्म होती है, कल इंशाल्लाह कोशिश करेंगे सूरह अनआम शुरू करने की। आज यहीं पर ख़त्म करते हैं। सुबहानक अल्लाहुम्मा अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, सुबहाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, व अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।